ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विभिन्न कारणों से पार्टी से अलग रहे लोगों को पुनः पार्टी से आबद्ध होने का कांग्रेस केंद्रीय समिति का निर्णय। देवा पक्ष निर्वाचन आयोग के निर्णय के विरुद्ध जाएगा अदालत। आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू। और पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब में हुई सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस ने विभिन्न कारणों से पार्टी में निष्क्रिय रहे और पार्टी छोड़ चुके लोगों को पुनः कांग्रेस में लौटने का आग्रह किया है। पार्टी सभापति गगन कुमार थापा की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कार्य समिति की बैठक ने विभिन्न कारणों से पार्टी से अलग रहे लोगों को फिर से पार्टी से आबद्ध होने का आग्रह किया है। बैठक ने निर्वाचन आयोग द्वारा नेपाली कांग्रेस के दूसरे विशेष महाधिवेशन के निर्णय को संविधान कानून और पार्टी के विधान के मुताबिक मान्यता देते हुए अद्यतन किए जाने को लेकर आयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है। ये जानकारी पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसे ने दी। साथ ही भविष्य में किसी भी दल के साथ अप्राकृतिक गठबंधन या सत्ता केंद्रीय समझौता न करने का निर्णय भी बैठक ने किया है। नेपाली कांग्रेस शेर बहादुर देउवा पक्ष ने निर्वाचन आयोग के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। आज सानेपा में हुई देउवा पक्ष की बैठक ने विशेष महाधिवेशन से निर्वाचित कार्य समिति को वैधानिकता देने के निर्वाचन आयोग के निर्णय के विरुद्ध कानूनी रास्ता अपनाने का निर्णय किया है। ये जानकारी प्रवक्ता प्रकाश शरण महत ने दी। नेकपा एमाले के सचिवालय बैठक जारी है। पार्टी केंद्रीय कार्यालय ललितपुर च्यासल में पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में जारी बैठक में आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए पार्टी के उम्मीदवार के बारे में विचार विमर्श हो रहा है। ये जानकारी केंद्रीय कार्यालय सचिव डॉ भीष्म अधिकारी ने दी। निर्वाचन आयोग ने हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्र में मतपत्र लगायत के सामग्री पहुंचाने के लिए विभिन्न 13 व्यावसायिक संस्था सूचीकरण किया है। आगामी फागुन 21 गते के लिए तय किए गए प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए आवश्यक निर्वाचन सामग्री मतपत्र तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए कुरियर सेवा की ओर 2 फर्म चुने गए हैं। आयोग के अनुसार चुने गए व्यावसायिक फर्म में साझा कुरियर एंड कार्गो और ट्रांस एयर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक प्रणाली शामिल है। आयोग ने हेलीकॉप्टर सेवा की ओर भी फर्म व कंपनी को सूचीकृत होने का आग्रह किया था, फिर भी कोई भी फर्म अभी तक दर्ता नहीं हुई है। इसी तरह ट्रक तथा कंटेनर सेवा उपलब्ध कराने के लिए 11 फर्म सूचीकरण हुआ है। जिला होते हुए प्रदेश कमेटी ने केंद्र में सिफारिश किए उम्मीदवारों के नाम के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है। निर्वाचन के लिए इसी मार्ग 6 गते उम्मीदवार मनोनयन करना है, इसलिए एमाले ने आज ही उम्मीदवारों का निराकरण करने के लिए विचार विमर्श कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव ने कहा कि नेपाल का संविधान उत्कृष्ट है और इसकी संरक्षण किया जाना चाहिए। आज संपादक समाज नेपाल के संस्थापक अध्यक्ष गोविंद बियोगी के 20वीं स्मृति दिवस के अवसर पर नुआकोट के शिवपुरी गांवपालिका 7 सुइरे चौर में आयोजित गोविंद बियोगी पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि 2072 साल का संविधान समावेशी समानुपातिक धर्मनिरपेक्षता सहित के विशेषता से उत्कृष्ट संविधान बनी है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि भावी सरकार में भी मीडिया कर्मी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आज नेपाल पत्रकार महासंघ एसोसिएट प्रदेश के आयोजन में ललितपुर के महालक्ष्मी स्थान में हुए दूसरी राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संचार कर्मी हरेक क्षेत्र में निपुण होते हैं, इसलिए निर्वाचन के बाद बनने वाले सरकार में भी उन लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संचार मंत्री खरेल ने कहा कि आगामी फागुन 21 गते होने वाले निर्वाचन को सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्ग से सहयोग होना चाहिए। नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष निर्मला शर्मा ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकारों के हक हित के लिए महासंघ क्रियाशील है और इसलिए अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और लोकतंत्र के रक्षा के लिए भी महासंघ सक्रिय है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कालीकोट की शुभकालिका गांवपालिका वार्ड नंबर 4 सल्लेरी में कल रात हुए जीप हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में दैलेख 820 नगर पालिका के 28 वर्षीय शंकर कठायत, आछाम के टेकेंद्र शाही और सहचालक कालीकोट के शुभकालिका वार्ड नंबर 2 के नवराज शाही शामिल है। यह जानकारी कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुरखेत ने दी। आसन्न प्रतिनिधि सभा चुनाव की स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार हो रहे कामों के बारे में गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल और निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों के बीच विचार विमर्श हुआ है। मंत्री अर्याल ने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। मौके पर कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भंडारी ने आयोग से स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार नियमित हो रहे और हो चुके कामों के बारे में जानकारी साझा की थी। उन्होंने बताया कि करीब 80% से अधिक काम हो चुके हैं। वहीं गृहमंत्री अर्याल ने बताया कि सुरक्षा प्रबंध में सरकार की ओर से पर्याप्त तैयारी हुई है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि देश में मौजूद राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए चुनाव का विकल्प नहीं है। आज पार्टी मुख्यालय पेरिस डाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में संयोजक प्रचंड ने ये बात कही। इस बात का जिक्र करते हुए कि राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार होना चाहिए, उन्होंने निष्पक्ष और भयरहित वातावरण में चुनाव सम्पन्न करने का सरकार से आग्रह किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में आज घने कोहरे के कारण 2 बड़े सड़क हादसे हुए। पाकिस्तान के पंजाब और बलूचिस्तान में अलग अलग दुर्घटनाओं में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सबसे दर्दनाक हादसा पंजाब के सरगोधा जिले में हुआ, जहां एक ट्रक पुल से नीचे सुखी नहर में गिर गया। वहीं बलूचिस्तान के और मारा इलाके में एक कोच पलट गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। दोनों घटनाओं ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी है। पंजाब के सरगोधा जिले में यह हादसा तड़के हुआ। रेस्क्यू अधिकारियों के मुताबिक ट्रक इस्लामाबाद से फैसलाबाद जा रहा था। इसमें 23 लोग सवार थे, जो एक जनाजे में शामिल होने जा रहे थे। कोट मोमिम तहसील के गोलापुर बंगला पुल पर पहुंचते ही ट्रक चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और वाहन पुल से नीचे सुखी नहर में जा गिरा। इस हादसे में 14 लोगों के मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 6 बच्चा शामिल थे। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न कारणों से पार्टी से अलग रहे लोगों को पुनः पार्टी से आबद्ध होने का कांग्रेस केंद्रीय समिति का निर्णय। देवा पक्ष निर्वाचन आयोग के निर्णय के विरुद्ध जाएगा अदालत। आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट निर्माण की प्रक्रिया है शुरू। और पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब में हुई सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।